इसके बाद अब यहां देखिए आयत 120 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 170 तक, इसके अंदर बिटवीन गज़वे उहद पर तबसरा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए तो फिर बात वाजे हो जाएगी। और आज भी ऐसी बहुत सारी उहद लगी हुई हैं चारों तरफ। नबी सल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो कुफार की अनापे बड़ी चोट पड़ी। उनको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे हाथ से निकल गए। खैर एक साल गुजरा तो एक गज़वे बदर के नाम पर जंग हुई। बिल्कुल एक एक्सीडेंटल किस्म की वॉर थी, कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक बिग वॉर बन गई। उसको भी नहीं हम छेड़ते। उस जंग के एंड पे कुफार ये धमकी देकर गए थे मुसलमानों को कि हम अगले साल भी आएंगे, अब हम हमला फिर करेंगे। मदीना में उससे वापस मक्का गए, वो सामान जो सारा उस काफले में था जो लाखों की मालकियत का था, सारे मक्का वालों ने डोनेट कर दिया कि इसको रखो, तैयारियां करो, अब मुसलमानों के खिलाफ हमला करेंगे। अगले साल फिर गज़वे उहद के नाम पर एक जंग हुई थी जिसमें कुफर अपनी पूरी तैयारियों के साथ आया। एक बिग चैलेंजिंग वॉर थी। जब नबी सल्लम को ये खबरें पहुंच गई तो अब आपने सहाबा से मशवरा लिया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात थे मुसलमानों का, अभी सर्वाइवल पूरा हो रहा था, मदीना में कई मसाइल थे। अल्लाह के नबी ने लोगों को बुलाया क्या किया जाए। दो राय दी गई लोगों की तरफ से। एक राय कहती कि हम अपने घरों में रहते हैं मदीना में, लेट देम कम, आएंगे देख लेंगे क्या होगा, घर में रहकर दिफा करें, यानी आप कह लीजिए वी विल हैव द डिफेंसिव वॉर। और डिफेंसिव वॉर मीन थोड़ी सी एक कमी होती है ना कि हम डर के घर में बैठ गए। दूसरे कुछ ग्रो कर रखा था वी नीड ऑफेंसिव वॉर, हम बाहर निकलते हैं, वो उधर से आए हम इधर से चलते हैं, हम उनको चबा देंगे। खुद नबी सल्लम की अपनी राय भी यही थी कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, हम अपने ही शहर में रहें। लेकिन जब मेजोरिटी की राय देखी, आपको इधर लीडरशिप की बहुत सारी बातें भी इंशाल्लाह मिलेंगी सीखने को। गज़वे उहद तो अपनी जगह एक पूरा लेसन है, एक पूरा मैं समझती हूँ कोर्स हो सकता है सिर्फ गज़वे उहद और उसके मॉरल्स के ऊपर। किस्सा मुख्तसर के अल्लाह के नबी ने उनकी बात मानी जो चाह रहे थे कि शहर से बाहर चले, और ये कौन थे, आप जैसी यूथ जिनको बदर में मौका ना मिल सका। और उन्होंने बाद में देखा बदरी सहाबा की तो अल्लाह ताला ने बहुत तारीफें फरमाई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, घर में रहे पता नहीं जंग होगी नहीं, अल्लाह के नबी चले निकलते हैं। जैसे जोशीले होते हैं ना, कहीं जाना हो तो बड़े क्या कहते हैं, घर में ही बैठ के खा लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं हम बाहर जाएंगे, कैफियत होती है। अब ये सारी यूथ थी, अल्लाह के नबी यूथ को हमेशा साथ लेकर चलते थे, और इस्लाम तब फैलेगा जब यूथ के हाथों में इस्लाम की जमाम आएगी। किस्सा मुख्तसर, जब मुसलमान निकले, अब निकले तो सब साथ, अब्दुल्ला बिन उबई जो के कौन था, आज से उसका तारुफ ले लीजिए क्योंकि हर जंग में इसका नाम आपके सामने भी आएगा और आप इन सारी चीजों को देखेंगे। इसकी राय क्या थी कि शहर में बैठे रहे, राय सेम थी इसकी और नबी सल्लम की, लेकिन उसका मोटिव फर्क था, ये बुजदिली को छुपाने के लिए, क्योंकि घर में होंगे तो कोई खबर तो नहीं फैलेगी कौन लड़ा कौन नहीं, तो मैदान जंग में लड़े तो मर जाएंगे। इसने शुरू में ये राय दी थी कि रहें यहां, जब सबने कहा नहीं तो ये भी चल पड़ा, लेकिन दिल में गरज था, अना थी। शौत नाम का एक मुकाम है मदीना शहर से बाहर तक, वहां जब पहुंचा इसने इस्लाम के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, प्रोपेगंडा किया, जमात मुसलमानों की जो गई हुई थी 1000 लोगों की उसको तोड़ा, 300 लोग इसके साथ मदीना वापस आ गए। और एक्सक्यूज क्या कि जी हमारी तो बात ही नहीं मानी, ये हमारी बात ही नहीं मानते, ये आगे हम बात करेंगे। टीम में ये सबसे बड़ा एक घुन होता है किसी सोसाइटी में, किसी इदारे की टीम में, जब किसी को ये ख्याल आ जाए ना कि मेरी मानो, या मेरी नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, चूंकि आप मेरी मानते नहीं मैं आपसे नहीं हूं, तो समझिए कि वो खत्म। वो कहते हैं ना देर इज नो आई इन अ टीम, टीम के TEAM, आई नहीं होता तो आई अना ईगो। किस्सा मुख्तसर, असल में बुजदिल था, मौत का डर था, वापस आ गया। जब ये निकलने लगा तो सहाबा बहुत घबरा गए, तो आप पढ़ेंगे आयतें अल्लाह में कहते हैं क्यों डरते हो, बदर की फतह भी तो अल्लाह ने दी थी, उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमान भी नहीं हुआ था, तो फतह मिली, आज इसके जाने पे क्यों परेशान हो, कोई नहीं। मोरल बुलंद किया सहाबा का, अल्लाह के नबी का लीडर के तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत किरदार हम देखेंगे। बहरहाल मुसलमान गए, अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी ने उहद की जगह पे पड़ाव डाला, यानी स्टॉप ओवर वहां लिया, जगह नॉमिनेट की, सहाबा बहुत थोड़े थे, उधर से 3000 का लश्कर आ रहा है, अगर सारे साथ रहते तो 3 times बिगर ग्रुप था, लेकिन 300 निकल गए तो वो और भी कम हो गए। अल्लाह के नबी ने एक जगह ऐसी थी पहाड़ी, छोटा सा एक रॉक था कि जिधर से दुश्मन के आने का खतरा था, बाकी पहाड़ बहुत बड़े हैं उधर से लोग नहीं आ सकते। और ये बात मैं कह रही हूँ तो मेरे जिन में वो मैदान है जो भी रिसेंटली दोबारा भी देखा हमने उमरे के ट्रिप में, कि वाकई ओहद की जो जगह बनी हुई है वो भी एक अल्लाह की तरफ से थी। एनीवे प्रोफेसर सल्लम की विजडम एज अ जर्नल कहती कि ये छोटी सी रॉक है इधर से लोग आ सकते हैं, उधर आपने 50 लोगों को खड़ा कर दिया और उनको साथ इंस्ट्रक्शन दी, जिंदगी हो मौत हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। फतह हो शिकस्त हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। तुम देखो कि परिंदे हमें नोच के खा गए, तुमने हमें जगह नहीं छोड़नी। मैदाने लश्कर में हम कट गए मर गए, तुमने जगह नहीं छोड़नी। खूब इंस्ट्रक्शंस दी अब्दुल्ला बिन जुबैर को आपने, उनका लीडर बना के मुकर्रर कर दिया। यही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुकाबला हुआ। ओहद का आगाज यानी स्टार्टिंग पॉइंट वेरी स्ट्रांग था, मुसलमानों को थोड़ी देर में गलबा मिला, कुफार जो भागने लग गए। वो जो बहुत जोश में आए थे उनके साथ वही हुआ जो बदर में हुआ। जब वो भागे, अब कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन इज ओवर नाउ। जैसे बाज प्रोग्राम के एंड पे वॉलंटियर्स को गलती लग जाती है, लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी किचन में है तो बाहर के भी इधर, वो सोचते हैं कि ऑल इज डन नाउ। हालांकि ऐसा नहीं था, अभी तो जंग थी। जब वो सब अपनी जगह छोड़ के गए और दुश्मन जब भागे तो उन्होंने माले गनीमत अपना छोड़ दिया। उस वक्त तक अभी कोई डिफाइंड रोल नहीं था, लोग अपना जाके दुश्मनों का छुड़ा हुआ माल जमा करने लग गए। अब ये वो चीज थी कि जो मुसलमानों के लिए नुकसान का जरिया बनी। ये देखते हुए वो 50 लोग भी देख रहे थे। अब वो भूल गए अल्लाह के नबी के हुक्म को, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तुमने जगह नहीं छोड़नी। उनको लगा जंग खत्म होगी अगर हम यहां खड़े रहे तो, माले गनीमत तो दूसरे फौजी ले जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ 10 लोग वहां रह गए और 40 लोग जो थे वो चले गए, और वो जो उनके सरदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर वो बुला रहे थे लोगों आ जाओ लोगों आ जाओ। हत्ता के यही हुआ, जब वो दर्रा खाली हुआ, वो दुश्मन जो भाग रहे थे उनको खबर मिली कि दर्रा खाली है, वापिस पलटे और वापिस आके उसी रास्ते से जब आए। अब मुसलमान तो माल की मोहब्बत में थे उस वक्त, हालांकि देखिए मैदानी जंग में गए हुए और माल की मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं आई, घरों में बैठे हुए होगी तो कैसी होगी। उन्होंने उनको बिल्कुल वो कहना चाहिए कि अनकॉन्शियस पाकर पीछे से हमला किया, फिर तो समझिए कि जीती हुई जंग हारने में बदल गई। 70 सहाबा शहीद हुए, नबी सल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, आपके हौद की कड़ियां आपके यहाँ कनपट्टी के पास घुप गई। हौद को निकालते हुए एक सहाबी के दो दांत टूट गए। मुसअब बिन उमैर का इंतकाल हुआ जो अल्लाह के नबी के हम शक्ल थे, खबर फैल गई कि नऊज़ बिल्लाह नबी सल्लम फौत हो गए। अब तो मुसलमानों का रहा सहा मोरल भी गया, अब टूट गया, फिर तीन गिरोह बन गए। कोई कहने का अब क्या करें, कहा चुप करो अबू सुफयान की बना ले लो, अब तो अल्लाह के नबी तो फौत हो गए हम किधर जाएं। कुछ ने कहा ये कैसे हो सकता है, नबी ने जिस रास्ते में जान दिए हम भी उस पर जान देंगे, ये क्योस पर पा गया। उस वक्त फिर अल्लाह के नबी लोगों को पुकार रहे थे, इलाही या इबाद, अल्लाह के बंदो इधर आओ, मैं इधर हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। फिर आपने सब मुस्लिम को दोबारा जमा किया। यानी हकीकत में गजवा उहद एक सबक है कि मुस्लिम को अपनी शिकस्त को कैसे फेस करना है। गजवा बदर क्या थी, कामयाबी को कैसे फेस करो, फतेह के जश्न मनाते हुए अल्लाह को ना नाराज करो। आज मुसलमानों के लिए देखें तो इस पूरे ग्लोब पे जगह जगह उहद के मैदान खुले हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा। नबी की नाफरमानी, हुक्म को जरा सा हल्का समझना और आप दौलत माल की मोहब्बत, उसने उहद की जीती हुई जंग हरा दी। लेकिन हारे फिर भी नहीं, ये भी नोट कीजिएगा। आप जाहिर है कि मुसलमान जब इस तरह थे तो कुफार उनको फिर पकड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रूप डाल दिया वो सब वापस चले, कुछ नहीं लेके गए मुसलमानों का। मदीना शहर खाली पड़ा था, जाके कुफारे मक्का मदीना पे हमला कर सकते थे, अल्लाह ने उनकी अकल मार दी, वो वापस चले गए। थोड़ा दूर गए तो फिर उसको ख्याल आया अबू सुफियान को, अरे ये क्या हुआ, हम तो उनको पकड़ सकते थे, इतना अच्छा मौका मिला नहीं पकड़ा, चलो वापस पलटते हैं। उसका जिक्र अगले वाक्य में आ रहा है। लेकिन याद रखिए, इसमें आज के हालात को समझिए, मेरे और आपके लिए यहाँ दो ताकत हैं, रसूल की बात को ना मानना और माल की मोहब्बत। आइए जरा इस वाक्य को सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें बाकी बातें होंगी। वइस गदौत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिनीन मकाइद लिल्किताल। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, मुसलमानों के सामने इस मौके का जिक्र कीजिए जब आप सुबह सवेरे अपने घरों से निकले थे। नोट कीजिए, अल्लाह के दीन के रास्ते में सुबह सवेरे निकलना पड़ता है। ये आप में से उन सब के लिए खुशखबरी है जो दूर से आते हैं और कहां से कहां आके जाते हैं। हम सब इसको अपने ऊपर लेकर सोचें। जो लोग दूर से आते हैं कभी अपने ऊपर अहम ना खाएं। याद रखिए कि अल्लाह की जात कभी भी बंदे का अजर जाया नहीं करती। कभी कभी हम सोचते हैं ना, हाय हमारे करीब हो तो फिर बहुत अच्छा है, करीब होगा तो क्या होगा, अजर भी तो कम होगा ना। जब आप अपने घर से निकलते हैं ना सुबह, तो आपका काउंटर शुरू हो जाता है। जैसे कुछ इदारे हैं वो पेकअप देते हैं जब वर्कर घर से निकल आते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी निकले, और कहते हैं कि उस दिन नबी सल्लम हजरत आयशा के हुजरे में थे, लेकिन आप देखिए कि आप निकले। तो आज मैं और आप अगर अपने बच्चों को घर छोड़ के आ गए, मियाँ के पास छोड़ आए कि छुट्टी का दिन नजर आज आप ये काम कर लीजिए, तो क्या बड़ी बात हो गई। तो ये दीन के काम अकेले नहीं चलते, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आती हैं। فرمایا روحت کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. یہ کب ہوا؟ جب عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا جن کے دلوں میں نفاق تھا. تو دو قبیلے تھے, سچے تھے, مخلص تھے, ان کا بھی دل آیا کہ ہم بھی چلتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے جائے گا نا تو باقی سب گھڑی دیکھنے لگ جائیں گے کہ شاید کوئی ٹائم آ گیا یا اوپر ہو گئے. ایک اینٹ ہٹتی ہے تو دوسری بھی ہلتی ہیں. لیکن چونکہ دل میں اخلاص تھا, ایمان تھا, تو حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا, اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا. یہ قبیلے فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا ذکر قرآن میں, گو کہ ہماری بزدلی کی بات ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ واللہ ولیہما واللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا. کیا اس وقت عبداللہ بن ابی اور یہ لوگ ساتھ تھے؟ نہیں تھے. جتنے وہ لے کے جا رہے ہیں اتنے تو ٹوٹل بدر میں تھے, 313 کے قریب تھے. تو اللہ کہتے ہیں توکل تو تم مجھ پر کرو. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. یعنی شکر گزار کس چیز کے؟ کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, تمہیں نبی دیا. اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. دیکھیے تکرار ملے گی آپ کو. اب ادھر تصبیر اور تتقو, آپ کہہ سکتے ہیں صبر اور تقوی دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے دو ہتھیار ہیں. احد میں اسی کے فقدان میں بھگدڑ مچی. اللہ میں سکھا رہے ہیں کہ ریئیکشنری نہ بنو, جذباتی نہ بنو, سوچ سمجھ کر کام کیا کرو. تو جس آن دشمن تم پر چڑھائیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب شان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. یعنی فتح نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے, جو بڑا قوت اور والا اور دانا بھی نہ ہے. اور یہ مدد تمہیں وہ اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نہ مردی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کا آنا بھی یہ نہ سوچنا کہ فتح فرشتوں کی وجہ سے ہوئی. فرشتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ تو صرف اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. مدد تو اصل اللہ کی طرف سے. اور یہ سبق آج پڑھنے کی ضرورت ہے. آج تو مسلمان تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے, پہلے تو چند لوگ تھے. اگر ایمان سے بھرے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ ہونا تو وہ جدید اسلحے کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہے. اسی لیے کہا کہ اصل یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں مدد دے. اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. غزوہ احد میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت زخمی ہوا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اب یہ ایک بات تھی, اللہ کے نبی کو کہنے کا حق تھا, لیکن اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. کہ آپ کیسے کسی کے ہدایت پہ آنے یا نہ آنے کی بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ انہیں معاف کرے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے اور زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں دیکھیے لوہا گرم تھا. احد کی شکست کی وجہ مال کی محبت ہوئی نا, تو اس بات کو بیس بنا کر حکم دیا گیا مدافع. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا چڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی, اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں انٹرسٹ کی بات ہے, سود کی بات ہے, کیونکہ عرب لوگ ملٹی پلائی کر کے سود دیتے تھے. آج تو آپ نے اکثر آفرز کے ساتھ دیکھا ہوگا نا 10% انٹرسٹ, 20%. عرب لوگ 10% 20% نہیں دیتے تھے, ملٹی پلائی بائی ملٹی پلائی, یعنی 100% 200% 300%. اتنی وہ سوسائٹی انڈلج ہو چکی تھی, گھس چکا تھا ان کی جڑوں میں سود, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. چند احادیث آپ سے شیئر کر لیتی ہوں صرف ایک حوالے کے بغیر, اس سوچ کے ساتھ کہ آپ جو بھی اس کا ریفرنس لینا چاہیں. بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کے ویب پیج آپ کو ساتھ وہ احادیث کا پیپر دے دیا جائے ای میل میں, تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے. اتنا وقت نہیں کہ یہاں ورڈ ٹو ورڈ احادیث پڑھیں, لیکن دو تین احادیث بہت فیمس ہیں. پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ جبرائیل کے ساتھ گئے تو آپ کو کچھ چیزیں دکھائی گئی تھیں. آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں تو ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, مٹکوں کی طرح شیشے کے ہیں, اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں جو ان کو اندر سے کھا رہے ہیں. तो आपने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये सूदखोर लोग हैं, यानी उनके पेटों में सांप और बिच्छू होंगे। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप एक खून की नहर के पास से गुजारे गए, तो वहां कोई शख्स बड़ी मुश्किल से खून की नहर से बाहर आता है, लेकिन किनारे पे खड़ा कोई फरिश्ता दोबारा उसको पत्थर मार के वापस उसमें भेजता है। तो पूछा ये कौन है, तो फरमाया कि ये भी सूद का काम करने वाले, लेने देने वाले, कि जब वो निकलना चाहता है तो जो सूद ले रहा है वो उसको वापस डाल देता है। फिर इसी तरह से एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चार लोगों पर इंटरेस्ट या सूद की वजह से लानत है। कौन? आकिलुहु व मोकिलुहु कातिबुहु व शाहिदु। आकिल खाने वाला जो ले रहा है, मोकिलु जो दे रहा है खिलाने वाला, शाहिद हो जो उसका विटनेस है, और कातिब हो जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। यानी हर कारोबार और जॉब जिसमें कोई ऐसा मामला आ जाए, इस हदीस की रोशनी में वो अल्लाह की रहमत से दूर है। अब ये सारी बातें और इसके साथ और बहुत सारी बातों में एक हदीस और बताती हूँ कि सूद का एक दिरहम खाना अपनी माँ के साथ तकरीबन 36 बार जिना करने से बड़ा। इतनी शदीद बातें। इसके बाद उम्मत मुस्लिमा जो उम्मत वसती, जिसके दिल में माल की तो मोहब्बत ही नहीं थी, वो अगर आज उसमें डल जाए तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आए? आज उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह की मदद क्यों आए, कैसे आए, उन घरों में कैसे आए जहां ये मामले हैं, उन कारोबारों में कैसे आए, उन नस्लों में कैसे आए, हर चीज में तो ये पानी पड़ गया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला आखिर क्या वजह है कि आज हम इतने परेशान मुसलमान देखते हैं इर्द गिर्द, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आना चाहते हैं अंदर आ ही नहीं पा रहे, अल्लाह की मदद आना चाहती है हम ले ही नहीं रहे। देखिए कोई मुंह ना खोले तो आप उसके मुंह में खाना कैसे डाल सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको इन तमाम चीज़ों से निकाले, और निकलने के रास्ते आगे हम देखते जाएंगे, और भी ये मौजू आएगा तो इंशाल्लाह इसमें आज के दौर में जो जाल फैला हुआ है, अगर आप वो सुन लेना कि ये बैंकिंग का सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था और इसके पीछे आज भी क्या हालात हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम तो फिर पुट ऑफ करके सब छोड़ छाड़ के तो कोनों में बैठ जाए, कोई किसी जगह डील ही ना करे। लेकिन इसके लिए मुस्लिम ब्रेन चाहिए। पीछे भी बात की थी, आज भी ये बात कहूंगी कि मुस्लिम यूथ को ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए ताकि मुस्लिम्स अपने सिस्टम क्रिएट करें। अगर आज सारों को खत्म भी कर दें तो मुस्लिम्स के पास अल्टरनेट है भी क्या? तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी सुस्तियां दूर करें और हम दीन के फायदे के लिए दुनिया का इल्म भी हासिल कर सकें।